कहीं ना कहीं प्रियंका को भी इस बात का आभास हो रहा था कि उसके पिता को भी उसके लिए एक अलग तरह की नफरत महसूस हो रही है और वो इसी वजह से इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। वहीं इस बीच आस्था और बाकी सब लोग साथ बैठी हुई थी। आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, साथ ही साथ दादाजी और अभियान जी भी वहां मौजूद थे। और इतना ही नहीं, अरमान को छोड़कर लगभग पूरा परिवार वहीं मौजूद था। अब फिलहाल जैसे ही आस्था की नज़र मायूस बैठे हुए अभियान जी पर पड़ी, वो पूरी तरह से थोड़ा सा चौंक गई थी। तभी दादाजी ने अभियान को इशारा किया कि वो जाकर अपने कमरे में आराम करे, क्योंकि इन सारी बातों के बीच काफ़ी देर हो चुकी थी। ना तो किसी ने घर में ढंग से कुछ खाया पिया था और ना ही किसी ने आराम किया था। एक अलग ही तरह का क्लेश पूरे घर में बना हुआ था और आस्था को अपना घर हंसता खेलता ही अच्छा लगता था। उसे बिल्कुल भी इस तरह की नेगेटिविटी और इस तरह की बातें पसंद नहीं थीं। हालांकि प्रियंका को सही सलामत देखकर सभी को अंदर ही अंदर सुकून तो था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि प्रियंका के दिल में जो जख्म लगे हैं वो शायद वक्त के साथ मिट जाएं, लेकिन उसकी रूह पर लगे निशान इतनी जल्दी नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए दादाजी ने बड़ी नम्रता के साथ अभियान जी से कहा कि वो जाकर आराम कर लें। तभी आस्था ने कहा कि तब तक वो उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आती है। ये सुनकर दादाजी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आस्था के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुम भी थक गई हो, कोई नौकर ये काम कर लेगा, तुम जाओ जाकर आराम करो, ठीक है? और बेटा अंश को भी देखो, रौनक बिटिया कब से दोनों बच्चों को संभाले हुए है, जाकर अंश को देखो। कहीं ना कहीं क्योंकि इतना सारा ड्रामा हो रहा था, इसीलिए आस्था ने अंश को रौनक के पास दे दिया था, ताकि रौनक अंश और अपनी गुनगुन बेटी दोनों को अच्छी तरह से संभाल सके। फिलहाल आस्था ने एक नज़र आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान को देखा। चारों के मुरझाए हुए चेहरे देखकर उसके दिल में अजीब से एहसास हो रहे थे। आस्था जानती थी कि इन चारों के दिमाग में इस वक्त कुछ अलग ही तरह के विचार चल रहे हैं और वो उनसे बातें भी करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो सीधे अंश के पास चली गई थी, क्योंकि काफ़ी देर से उसने अपने बेटे को देखा नहीं था और ना ही उसे प्यार किया था। आस्था अपने बेटे के बिना ज़्यादा देर रह नहीं सकती थी। वहीं आस्था और बाकी सबके जाने के बाद अब केवल चारों ही हॉल में मौजूद थे। तभी आहान तुरंत खड़ा हुआ और बारी बारी से सबको देखते हुए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है मानो कि अरमान भाई को भले ही यादें वापस आ गई हों, लेकिन जो वायरस राजवीर ने अरमान भाई को दिया था, मुझे लग रहा है कि उसका असर अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। कुछ अजीब सा लग रहा है उनका बर्ताव, क्योंकि अभी तक भले ही वो सबको प्यार से पहचानने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़बरदस्ती सब कुछ कर रहे हों। आहान ने जैसे ही ये कहा, ध्रुव एक बार फिर उसे डांटते हुए बोले, क्या यार, हम तो एक बार फिर से वही सारी बातें लेकर बैठ गए, क्या इन सब बातों के अलावा तेरे पास कोई और बात नहीं है करने के लिए? घर में ऑलरेडी प्रियंका का इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है और ऊपर से तो इस तरह की बातें फिर से लेकर बैठ गया। मैंने तुझे कहा ना, अरमान भाई बिल्कुल ठीक हैं और वो अगर आस्था भाभी को ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली है वो शुरू से ही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर वो अब खुलकर प्यार कर रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, आकाश तुरंत बोला, मेरे ख्याल से आहान जो कह रहा है कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ तो ऐसा है जो अरमान हमसे छुपा रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके लिए अब हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अरमान की यादें वापस आ गई थीं तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इसके बाद भी उसने सीधे आस्था को डाकविला भेज दिया था, भला वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है? क्योंकि अरमान अपनी होश में अपनी यादों के साथ आस्था को डाकविला कैसे भेज सकता था, वो भी ये जानते हुए कि वहाँ उसका सबसे खतरनाक दुश्मन सम्राट रहता है। मुझे कुछ ना कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो ऐसा है जो हम लोगों से छूट रहा है। ऊपर से अरमान ने अबीर को भी उसके ऊपर प्रॉपर्टी के कागज वगैरह सब दे दिए हैं और वीर को जाने के लिए भी फोर्स किया, साथ ही साथ वसुंधरा के साथ वीर को भी इंडस्ट्रीज वापस लौटा दिया। भले ही वीर अब घर का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसे इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी देकर यहाँ से भेजने की क्या जरूरत थी? आखिरकार चल क्या रहा है अरमान के दिमाग में? मुझे लगता है कि हमें सीधे तरीके से उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि इस बार बात केवल आस्था की नहीं है, इस बार खतरा हमारी पूरी फैमिली पर है, हमें जाकर उससे मिलना होगा। अब आकाश की बातें सुनकर ध्रुव सच में थोड़ा सोच में पड़ गया था। फिर वो धीरे से बोला, लेकिन आकाश भाई, हो सकता है कि हम लोग ही ज्यादा सोच रहे हों, अरमान भाई तो वैसे ही हैं, शायद हमें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब सुमित बोला था, एक बार बात करने में कुछ नहीं जाता है, तुम सबके सब चलो और मीटिंग का मैसेज भेज दो अरमान को, आज हम सीधे फार्म हाउस पर मीटिंग करेंगे। अब ये सुनकर सभी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर आस्था इस वक्त अंश को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। अरमान अभी तक वहां नहीं आया था और आस्था सोचने लगी थी कि आखिरकार अरमान को किसका कॉल आया था कि वो इस तरीके से अचानक चला गया, कहां जा सकते हैं अरमान जी। आस्था ने कई बार कॉल ट्राई करने की कोशिश की, उसके बाद उसने आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान को भी कॉल किया, लेकिन चारों का भी कॉल नहीं लगा था। तब आस्था समझ गई कि जरूर वो लोग किसी जरूरी बात के लिए ही गए होंगे। फिलहाल जो कुछ भी प्रियंका के साथ हुआ था और उसके मामा का ऐसा बदला हुआ बर्ताव आस्था को पूरी तरह से सोच में डुबो रहा था। वो सोचने लगी थी कि आखिरकार उसके मामा तो इतने ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं और हमेशा से ही दिमाग से काम लेते हैं, वो इस तरीके से कभी कुछ भी नहीं सोचते। तो फिर अचानक से हुआ क्या है? जिस तरीके से वो सोच रहे थे और जिस तरह का बर्ताव कर रहे थे वो बिल्कुल भी उनके स्वभाव जैसा नहीं था। कहीं ना कहीं आस्था के मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि उन्हें कैसे पता चला कि राजवीर अकेला नहीं है, उसके साथ सम्राट भी है। सम्राट के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या कुछ और भी ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है? आस्था दिमाग से पूरी तरह से सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना वो इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा उसके विचार उलझते चले जाते थे। फिलहाल वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सभी के सभी लोग दबे पांव फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। फार्म हाउस पर जाने के बाद सभी ने गहरी सांस ली और आसपास चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगे कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। जैसे ही सभी लोग वहां जमा हुए उन्होंने देखा कि अरमान पहले से ही वहां किंग चेयर पर बैठा हुआ था। अब आकाश खुद को रोक नहीं पाया। अरमान को देखकर वो तुरंत बोला, अरमान हमें नहीं पता कि तुम हमसे क्या छुपाए हो, हम यहां पर सीधे बात करने आए हैं। तब आकाश ने सीधे शब्दों में अरमान से कहा था, क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमसे छुपा रहे हो या तुम हमें बताना नहीं चाहते? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अरमान देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो, ये केवल आस्था और अंश की बात नहीं है, पूरे के पूरे परिवार की बात है। तो तुम्हें हमें बताना होगा, ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारा बर्ताव कभी अजीब सा लगता है, कभी कुछ और लगता है? क्या तुम्हारी यादें पूरी तरीके से वापस नहीं आई हैं? बोलो अरमान, हमें जवाब दो। अब सुमित भी अरमान को गहरी नजरों से देखते हुए बोला,
देखो अरमान, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई परेशानी है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है तो तुम हमें बता सकते हो। हम लोग शुरू से तुम्हारे साथ खड़े रहे हैं, हर काम हमने मिलकर किया है, तो हम नहीं चाहते कि अगर इस बार भी तुम कोई प्लान बना रहे हो तो वो हमारे बिना बनाओ। तुम्हें हमें सच बताना ही होगा अरमान। अब ये सब सुनकर अरमान ने केवल तिरछी सी मुस्कुराहट दी और अचानक उठकर वो चारों के पास आकर खड़ा हो गया। एक पल के लिए चारों थोड़ा सा सहम गए थे, क्योंकि अरमान का ऑरा और उसकी मौजूदगी इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक वाइब दे रही थी। लेकिन तभी अचानक अरमान उन सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखें नम होने लगीं। अचानक अरमान को इस तरह टूटी हुई हालत में देखकर सबकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। वहीं आहान तो खुद को रोक नहीं पाया और पूरी तरह से रोते हुए बोला, अरमान भाई क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हो गया अरमान भाई? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? आप चाहे तो मुझे थप्पड़ मार लीजिए, मैं बहुत देर से उल्टी सीधी बातें सोचता जा रहा हूँ आपको लेकर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका दिल दुखा दिया अरमान भाई। कहीं ना कहीं आहान पूरी तरह से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि वो अरमान को लेकर जिस तरह की उल्टी सीधी बातें सोच रहा था, जो सवाल उसके दिल और दिमाग में आ रहे थे, शायद उसी वजह से अरमान को उसकी बातें बुरी लग गई थीं। वहीं आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों के चारों घुटनों के बल बैठकर चारों तरफ से अरमान को घेर कर बैठ गए थे। आकाश ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और सुमित ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा। चारों मजबूती की तरह उसके साथ बैठकर बोले, अरमान क्या हुआ है? क्या कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है या होने वाला है? तभी अरमान ने तुरंत अपनी आंखों के आंसू साफ किए और बोला, मुझे ये सब कुछ पता चल चुका है कि मेरी यादें जाने के बाद मैंने क्या किया था। मैंने अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को कितनी ज्यादा तकलीफ दी थी। मैंने अपनी पत्नियों को उनके पतियों से अलग रखने की कोशिश की, वो भी उस वक्त जब रौनक माँ बनने वाली थी। मैंने उसे उसके पति से दूर रखा उस वक्त जब उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे मेरी सारी यादें वापस लौट आई हैं और ये भी वापस लौट आया है कि यादें जाने के बाद मैंने किस तरह से बदतमीजी की थी, मैंने किस तरह सबको हर्ट किया था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपनी आस्था को कितनी ज्यादा तकलीफ दे बैठा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी उसे इतनी तकलीफ दूंगा। नानी माँ, अपनी बहनें, घर की सारी लड़कियां, सबके साथ मैंने बदतमीजी की। अपनी बहनों पर मैंने चिल्लाया, उन्हें उल्टा सीधा कहा। हो सके तो मैं आप चारों से, तुम चारों से माफी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना।